नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने और कमाई की संभावना कम होने के आधार पर यह कदम उठाया गया है। RBI ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से बीमा दावे के तहत 5 लाख रुपए की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी LIC के एक MD के तौर पर सतपाल भानु को नियुक्त किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि भानु को सिद्धार्थ मोहंती की जगह MD बनाया गया है। मोहंती को अप्रैल में LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। LIC ने कहा कि भानु की MD के तौर पर नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने से प्रभावी होगी और 31 दिसंबर 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति या अगले आदेश तक लागू रहेगी। इंटेल इंडिया के भारत में पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख निवृत्ति रॉय ने इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO का कार्यभार संभाल लिया है। एक सरकारी बयान में बुधवार को ये जानकारी दी गई। उन्होंने औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव मनमीत के नंदा से कार्यभार संभाला है। नंदा को मार्च में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इंटेल में वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में 29 साल के कार्यकाल के बाद रॉय इन्वेस्ट इंडिया से जुड़ी हैं। इन्वेस्ट इंडिया एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। ये देश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को सुविधा प्रदान करता है। बहुपक्षीय विकास बैंकों को स्थायी बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने तथा राष्ट्रों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए सालाना $260 अरब अतिरिक्त उपलब्ध कराने की जरूरत है। G20 विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। स्ट्रेंथनिंग MDB द ट्रिपल एजेंडा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक प्रतिवर्ष करीब $3,000 अरब अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत है। इनमें से $1,800 अरब जलवायु से संबंधित कार्यों में निवेश किया जाएगा। इसमें ज्यादातर निवेश टिकाऊ बुनियादी ढांचे में किया जाएगा। वहीं अन्य सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में $1,200 अरब अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार MDB को अतिरिक्त वार्षिक आधिकारिक वित्त पोषण में $260 अरब की वृद्धि करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में बुधवार को तेल तिलहन कारोबार में व्यापार का मिला जुला रुख दिखा। सरसों तेल तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में साधारण गिरावट का रुख रहा, जबकि विदेशों में तेजी के कारण सोयाबीन डीजल खाद्य तेल कीमत में मामूली सुधार के अलावा मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन एवं सोयाबीन दिल्ली एवं इंदौर तेल, कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। मलेशिया एक्सचेंज आज बंद है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल लगभग 2% की तेजी है। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि खाद्य तेलों का काफ़ी मात्रा में आयात हो रहा है और स्थिति ये है कि कई आयातित तेल के भी बाजार में खपने में मुश्किलें आ रही हैं। अमेरिकी निवेश कंपनी GQG पार्टनर्स ने बाबा रामदेव की अगुवाई वाली खाद्य तेल कंपनी पतंजलि फूड्स में 5.96% हिस्सेदारी खरीद ली है। शेयर बाजार को दी गई सूचना के मुताबिक GQG पार्टनर्स ने पतंजलि फूड्स के 2,15,64,517 इक्विटी शेयरों को बिक्री पेशकश के जरिए खरीद लिया है। इस तरह उसने पतंजलि फूड्स में 5.96% हिस्सेदारी ले ली है। कंपनी के मौजूदा बाजार भाव पर GQG पार्टनर्स की इस हिस्सेदारी का मूल्य करीब 2,900 करोड़ रुपए है। पतंजलि फूड्स का बाजार पूंजीकरण 48,245 करोड़ रुपए है। पतंजलि फूड्स ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि उसकी प्रवर्तक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद बिक्री पेशकश के जरिए 2.53 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। इस बिक्री के लिए ₹1,000 का आधार मूल्य तय किया गया था। पतंजलि फूड्स में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 13-14 जुलाई को बिक्री पेशकश लाई गई थी। इसकी अवधि खत्म होने के बाद पतंजलि फूड्स में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घटकर 73.82% रह गई है। पतंजलि आयुर्वेद ने आर्थिक संकट में घिरी रुचि सोया इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर इसे पतंजलि फूड्स का नया नाम दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से तेजी एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और 2050 तक इसका आकार अमेरिका के बराबर होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने ये बात कही है। वुल्फ ने इसके साथ ही कहा कि पश्चिमी देशों नेता सोच विचार कर भारत पर दाव लगा रहे हैं। वुल्फ ने द फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे लेख में कहा, मैं मानता हूं कि भारत 2050 तक प्रति व्यक्ति GDP की वृद्धि को 5% या इसके आसपास बनाए रख सकता है। बेहतर नीतियों से वृद्धि इसकी ऊंची भी रह सकती है, हालांकि ये कुछ कम भी रह सकती है। उन्होंने कहा कि भारत चीन प्लस वन रणनीति को अपनाने वाली कंपनियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। बड़े घरेलू बाजार की वजह से इस मामले में अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में भारत लाभ की स्थिति में है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति के मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक देश की जनसंख्या 1.67 अरब पर पहुंच जाएगी। अभी भारत की आबादी 1.43 अरब है। वुल्फ ने कहा कि देश के बैंकों का बही खाता बेहतर हो गया है, ऋण वृद्धि भी अब बेहतर आकार ले रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।